2-3 रोज पहले एक खातून जो जिनको बहन कहता हूँ, उन्होंने अपनी बच्ची के हाथ की बनी हुई पेंटिंग्स मुझे दिखाई। आखिर उस बच्ची ने किसी वक्त मुझसे पूछा होगा, मुझे याद नहीं, कि वो टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में जाएं या पेंटिंग किया करें। तो मैंने कह दिया होगा कि पेंटिंग कर लें, लेकिन उनके हाथ की पेंटिंग्स देख के वो जो हम महावरतन कहते हैं कि हैरान और परेशान रह गया। अगर जी ये तरकीब बड़ी टेढ़ी सी है कि एक आदमी एक वक्त हैरान भी हो और परेशान भी हो, लेकिन उस महावरे का तर्जमा उस दिन समझ में आया जब पेंटिंग्स उसके हाथ की बनी हुई देखी। उस बच्ची ने बहुत ही नाजुक और दुश्वार काम को पकड़ा है। मौलाना रोम की वर्सेस को उसने पेंटिंग्स में ढाला है। जो भी उस इस पर मोबाइल पर पेंटिंग्स के इमेजेस उस बच्ची ने अपनी वालदा को भेजे, वो सभी के सभी बहुत अच्छे थे, लेकिन इसमें एक मनोरम के वर्ष ऐसी थी जो मुझे यूं लगा कि शायद मौलाना रोम ने 800 साल पहले हम लोगों के लिए कही थी। उस बच्ची ने उस वर्ष को अंग्रेजी में तर्जमा करके पेंटिंग के एन दरमियान में वाटर मार्क के तौर पर लिखा हुआ है उसे। The moon cannot shine if it avoids nights. चांद कभी चमक ही नहीं सकता अगर वो रातों से दूर भागने लगे। हम लोग संभाल दिया था अंधेरी जिंदगी में, अंधेरी रात से बड़ी दूर भागते हैं। जिंदगी में पेश आने वाली मुश्किलात और जिंदगी में पेश आने वाली दुश्वारियां, रुकावटें, इनसे हम बहुत दूर भागते हैं। हालांकि अगर हम जरा गौर करें तो पता ही चलता है कि वो लोग जो जिन्होंने बहुत शोहरत हासिल की, जो तारीख में याद रखे गए, और दुनिया आज भी उन्हें याद करती है, ये वो सभी लोग हैं। इन सभी को जिंदगी में बेपना दुश्वारियों का सामना करना पड़ा है। हम अंबिया कराम की जिंदगी पर अगर एक नजर दौड़ा लें, इसलिए कि अंबिया कराम के अल्लाह के दोस्त होने में कोई शक और शुबा नहीं है, बल्कि इमाम अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो महबूब हैं रब के। किसी भी पैगंबर की जिंदगी उठा के हम देखें तो या तो वो पैदाइश से पहले ही यतीम हुए, पैदाइश से 2-4 महीने पहले वालिद का इंतकाल हो गया, दुनिया में आए तो बतौर यतीम के आए, या पैदाइश के फौरन बाद वालिद की डेथ हो गई। लड़कपन तक पहुंचते पहुंचते वालदा भी खो दी पैगंबरों ने। स्वाय हजरत ईसा की, जिनकी वालदा उनकी नौजवानी तक जिंदा रही। जिन लोगों के साथ ये वाकया पेश नहीं आया, जिन अंबिया इकराम के साथ, उन्होंने फोर्स्ड यतीमी गुजार ली, जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। तमाम अंबिया कराम की इब्तदाई जिंदगी, लड़कपन का जमाना, नौजवानी का जमाना इंतहाई सख्त मुशक्कत का है। और फिर जब ऐलान नबूत किया तो अपनी ही कौम से बदतरीन मुखालफत का सामना करना पड़ा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपना मुल्क ही छोड़ के जाना पड़ गया, वजह का कुछ रही हो, लेकिन अल्लाह ताला ने कुछ इस तरह के हालात पैदा कर दिए कि उनके मुक्के से आदमी मर गया, उन्होंने अपना मुल्क छोड़ के जाना पड़ गया। तो फिर बकरियां चराते रहे, मुशक्कत की जिंदगी गुजारी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उनकी कौम ने क्या क्या अजियतें दी, किन मुश्किलात में डाला। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी ऐलान नबूवत के बाद किस किस्म की थी, आप 12 साल मक्का में गुजारे ऐलान नबूवत के बाद, क्या किस किस्म की और क्या क्या मुश्किलें उठाई हैं, तकलीफें उठाई हैं। फिर अपना आबाई वतन छोड़कर हिजरत कर जाना पड़ी। औलिया इकराम की जिंदगियों को देख लें आप, मैंने यहां शायद किसी वक्त एक किस्सा सुनाया था कि अरस्तु, कोई नुक्ता फंस जाता था, बहस हो जाती थी अहबाब के दरमियान, तो फिर कई कई रोज घर नहीं आ पाते थे। तो एक मर्तबा किसी ऐसे ही बहस में वो फंस गए। दो तीन दिन के बाद जब घर आए तो बेगम साहिबा बहुत बरहम थी। इनके एक शागिर्द भी इनके साथ थे, तो बेगम साहिबा ने उन शागिर्द का भी लिहाज नहीं किया, तो उनकी मौजूदगी में ही हस्बैंड पर बेपनाह गरजने बरसने लगी। चूंकि कसूर इनका अपना था इसलिए मुस्कुराते रहे, तो उस मुस्कुराहट ने बेगम को और सेखपा कर दिया। तो गुस्से में आके पास पानी की भरी हुई बाल्टी थी, वो अपने शौहर पर दे मारी। तो शागिर्द ने देखा कि इतना अजीम इंसान और इतना बड़ा दानिश्वर, उसकी ये दरगत बन रही, तो उसने कहा कि हजूर ये क्या। तो कहने लगे कि बादलों के इतने गरजने के बाद बरसना लाजमी था। तो औलिया इकराम में अगर आप चले जाएं, दानिश्वरों को देख लें, साइंसदानों को देख लें, तो स्वाय एक्सेप्शनल केसेस के अक्सरियत उनकी है जिनकी बेगमात बहुत ही जोरावर और डंडे वाली होती हैं। ये तमाम लोग जो मुश्किल जिंदगी गुजारते हैं, जिंदगी का एक पहलू उनका बड़ा शदीद होता है, बहुत ही सख्त और बहुत दुश्वारियों से भरपूर जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन उसके इनाम के तौर पर रब ताला उन्हें एक ऐसी इज्जत और ऐसी शोहरत अता कर देता है। कि दुनिया उन्हें सदियों तक भूल नहीं पाती। जितने भी हमारे यहां साइंसदान गुजरे हैं जिन्होंने इंसानियत की खिदमत की और बहुत सी डिस्कवरीज की हैं, उनकी जिंदगियां भी ऐसी थी जिनके लिए उन्होंने इजादात की, डिस्कवरीज की, खुद उन्होंने ही उन्हें बड़ा मुश्किल में डाल रखा, मुखालफतें होती रहीं, जेल भी भेज दिए गए। लेकिन इनाम क्या मिला? एक ऐसी इज्जत और ऐसी शोहरत जो कई सदियों के बाद भी गहनाती नहीं है। किसी चीज को भी अजमत सिर्फ इंसान ही नहीं है, इंसान के अलावा भी अजमत मिलती ही पिस जाने के बाद है। सबसे हकीर तरीन चीज हमारे नजदीक मिट्टी है। ये तमाम मखलूक के पांव में रोंदी जाती है, सारी मखलूक इस मिट्टी पर चलती है, पांव के नीचे रोंदती है उस मिट्टी को। लेकिन रब ताला इस मिट्टी को क्या इज्जत बख्शता है कि उसके अंदर से सोना भी निकलता है, यूरेनियम भी निकलता है, हीरा भी इसी मिट्टी के नीचे है। और इंसान जैसी अजीम चीज जिसको फरिश्तों ने सजदा किया है, उसकी रूह जब उसके जिस्म को छोड़ देती है तो इसी मिट्टी में चला जाता है। तो यह अजमत मिट्टी को इसलिए हासिल होती है कि वो लोगों के पांव में रोंदी जाती है। शैतान भी इस एक बारीक से नुक्ते को समझ नहीं सका था, बावजूद अपनी अपने इल्म के, बावजूद अपनी इबादत के, वो धोखा खा गया। मिट्टी के उस पुतले को उसने मिट्टी ही समझा, मिट्टी के उस पुतले के अंदर अजमत को वो देख नहीं पाया। नतीजा ये हुआ कि सजदा करने के हुक्म से सता भी कर गया। अगर उस मिट्टी के अंदर छुपी हुई उस अजमत को वो देख लेता तो शायद वो रांदा दरगाह न होता कि वो रब के उस हुक्म की तामील कर लेता सजदा करने की। तो बजाहिर जो चीजें हमें बहुत मामूली दिखाई देती हैं, वो मामूली होकर ही तो अजमत पाती हैं। जैसे मैंने यहां अर्ज किया था कि पानी को सूरज की गर्मी और तपिश मिलती है और वो इतनी हिद्दत होती है कि पानी बुखारात बनकर उड़ जाता है और बुलंदी पे चला जाता है। ऐसी बुलंदी के हवा के दोष पर तैरता फिरता है वही पानी। फिर रब ताला उसको वह अजमत भी बख्शता है कि वो सूखी जमीन पर बरसता है, उसे हरा भरा कर देता है, खेतों पर बरसता है तो वो खेत खलियान में तब्दील हो जाते हैं। यह अजमत है। तो जो इंसान भी जिंदगी की अंधेरी रातों से नहीं घबराया, वो चमका है, चांद की तरह चमका है। और चांद की रोशनी याद रखिए हमेशा ठंडी और फरहत बख्श होती है, उसमें तपिश नहीं होती। वो लोगों के जहनों को सुकून बख्शती है वो इंसान के लिए सूदिंग होती है, उसमें वो तेजी नहीं होती जो सूरज की रोशनी में है। तो वो इंसान जो दुनिया में मुश्किलात को हंसखेल कर फेस करते हैं, अपनी जिंदगी का हिस्सा समझ लेते हैं कि जिस तरह खुशी है इसी तरह गमी भी मेरी जिंदगी का हिस्सा है, जिस तरह सुख है वहां दुख भी मेरी जिंदगी का हिस्सा है, अगर सुख मैंने एंजॉय किए हैं तो दुख भी मैं ही सहूंगा, इसे मुझे ही सहने हैं वो, अगर मैंने तंदुरुस्ती को एंजॉय किया है तो बीमारी को भी मैंने ही झेलना है, अगर मैंने खुशहाली देखी है तो तंगदस्ती को भी मैं ही गुजारूंगा। तो जब एक चीज गुजारना ही ठहरी कि उससे कोई मफर मुमकिन नहीं है, उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, जो दुख झेलना ही है तो फिर उसे हंसते खेले क्यों खेलते क्यों ना झेला जाए बजाय रोते हुए झेलने के। बर्दाश्त तो हमें करना है, रोते हुए करेंगे वो सिर्फ बर्दाश्त रह जाएगा, और अगर उसे हंसी खुशी हमने न सिर्फ एक्सेप्ट किया बल्कि गुजार लिया तो वो सब्र के जिम्मे में आ जाएगा, और सब्र के जिम्मे में जो चीज आती है उसका इनाम बहुत बड़ा है कि कुरान के अल्फाज में सब्र अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो अगर रब का साथ मिल गया किसी को, उससे बड़ा इनाम क्या होगा दुनिया में। फिर शुक्र गुजारी का भी एक ऐसा अंदाज है, शुक्रगुजारी ये नहीं कि मैं जुबान से कहता फिरूं कि अल्लाह का बड़ा शुक्र है, और लोगों के पास जाके मैं कहता रहूं कि मैं मेरे तो कोई काम होता ही नहीं, हर काम में रुकावटें हैं, मैं मिट्टी को हाथ लगाता हूं सोने को हाथ लगाता हूं वो मिट्टी हो जाती है, कभी कोई काम हुआ ही नहीं, वैसे अल्लाह का बड़ा शुक्र है। तो ये शुक्र नहीं शिकवा है, शुक्र तो ये है कि इंसान उस मुश्किल को भी ये समझ के उठा ले कि ये मेरे रब की अता करदा है। बिल्कुल इसी तरह जैसे पैगंबर ने अपने जख्म से गिरते हुए कीड़े उठा लिए थे कि ये कीड़े भी मेरे रब के अता करदा है, ये क्यों जाया हूं, तो उसका इनाम बड़ा है। परवरदिगार किसी साहब ने पूछा है ऑस्ट्रेलियन तोतों को पिंजरे में रखना मुनासिब है या नहीं, क्योंकि ये एक आजाद जानदार है। जो चीजें आजाद हैं हमें हक नहीं कि हम उन्हें कैद करके रखें, आजाद चीजों को आजाद ही रहने देना चाहिए। कुछ लोग इन्हें पालते हैं, तो अगर उन्हें पाला है तो फिर उनकी पूरी एहतियात कीजिए और उनकी देखभाल अपनी जात से ज्यादा कीजिए, इसलिए कि उसकी जिम्मेदारी हमने उठा ली है क्योंकि हमने उसे पिंजरे में बंद कर दिया है। अगला इन्हीं साहब ने अपना एक ख्वाब बताया है, मैं अक्सर साहिबान जो ख्वाब लिख कर दे देते हैं, मैं एक चीज अर्ज किया करता हूं। ख्वाब की ताबीर इस तरह से नहीं बताई जा सकती, वो अगर बताई भी जाए तो मुनासिब नहीं होगी। ख्वाब की ताबीर जानने के लिए कई एक चीजों का होना बड़ा जरूरी है। एक तो ये कि ख्वाब देखने वाले इंसान की रूहानी कैफियत क्या है, रात के किस हिस्से में वो ख्वाब देखा गया है, तो जब तक के बुनियादी इंफॉर्मेशन इंसान के पास ना हो ख्वाब की ताबीर बताना मुनासिब नहीं होगा। और एक चीज मैं अक्सर बेशतर अर्ज करता रहता हूं, हालांकि असूली तौर पर यह कंसर्न मेरा नहीं होना चाहिए, लेकिन अजीब बात यह है कि मैं इस पर ज्यादा कंसर्न शो करता हूं, शायद ज्यादती कर रहा हूं आप लोगों के साथ, कि ये जो हमारे जाती मामलात हैं, हमारे ख्वाब हैं, दुआएं हैं, मैं इन्हें इंसान की पर्सनल जिंदगी का हिस्सा समझता हूं, इंसान की प्राइवेसी है ये, तो पब्लिकली उसका बयान करना मेरे नजदीक ज्यादा मुनासिब नहीं कि किसी की प्राइवेसी को मैं इस तरह से ब्रीच कर दूं। जो जाती चीजें हैं अपनी, उसका जवाब मैं जरूर दूंगा, लेकिन वो आप अलहदगी में मुझे बता दीजिए कि आपका एक भ्रम कायम रह जाए। क्योंकि जो कुछ मैंने जिंदगी में देखा वो हर इंसान, वो ये है कि हर इंसान की इज्जत बहुत कीमती है, हर इंसान का भ्रम कायम रहना चाहिए। रब ताला भी सत्तार है, वो हमारे मामलात पर पर्दा डाल देता है, हमारा भ्रम कायम रखता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी सख्ती से इस पर अमल फरमाते थे कि किसी भी इंसान का कोई जाती मामला पब्लिकली बयान न कर दें कि जिससे उसका भ्रम कायम न रह सके। तो ये सुन्नत रब भी है और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। आप जरूर जाती चीजें मुझसे पूछ लीजिए, अगर मैं बता सकता हूं तो जरूर बता दूंगा मैं, लेकिन अलहदगी में पूछ लीजिए। तो ये ख्वाब भी, जिन साहब ने भी ये ख्वाब पूछा है मुझसे दुआ के दौरान मिलने, मैं इसकी ताबीर उन्हें बता दूंगा। और एक और ख्वाब के जमन में मैं अर्ज कर दूं, कि जो कौमें अमली होती हैं, अमल पर यकीन रखती हैं, जैसे कि रब ताला मुसलमान से तवक्को रखता है कि मुसलमान मुजाहदों की तरह हर वक्त कमर कस के अमल के लिए तैयार रहेगा, मेहनत के लिए, जद्दोजहद के लिए, न सिर्फ तैयार होता है बल्कि वो जद्दोजहद पूरी करता है जिंदगी में। वो लोग इस पे यकीन नहीं रखते कि ख्वाब मुझे क्या कहती हैं, वो इसमें यकीन रखते हैं कि ख्वाब को मैं बदल डालूंगा। इस वक्त बदकिस्मती से उस बादशाह का नाम मेरे जहन से निकल गया कि किसी ज्योतिषी से उसने फतह के बारे में पूछा था, तो उसने हाथ देखकर यह कहा कि हजूर आपके हाथ में फतह की लकीर नहीं है। उस बादशाह ने अपने हाथ उसके हाथों में से खींचा, वापस खंजर निकाला और उससे हथेली पर एक लकीर खींच दी उसकी नोक से। उसने कहा कि अब देखो ये लकीर खिंच गई है फतह की, तो अगर ये लकीरें मेरी फतह और शिकस्त का फैसला करती हैं तो लकीर मैंने खुद बना दी। मुसलमान लकीरों का मोहताज नहीं है, मुसलमान ख्वाबों का मोहताज नहीं है, मुसलमान अपनी अमली जद्दोजहद से और रब पर भरोसे से खुद लकीरें तख्लीक करता है। मुसलमान सितारों की चाल का मोहताज नहीं है, सितारे उसे कंट्रोल नहीं करते, बल्कि मुसलमान रब ताला की बताई हुई राह पर चलकर उस मकाम पर चला जाता है कि एक उंगली के इशारे से सितारों की चाल बदल देता है। मैं और आप सब इस पर एफर्ट करें कि बजाय इसके कि हम सितारों की चाल से कंट्रोल किए जाएं, एस्ट्रोलॉजिस्ट हमें ये कहे कि अब फलां सितारा फलां जगह से फलां जगह चला गया तो हमारी जिंदगी में तब्दीली आएगी, हम सितारों की चाल उंगली से बदल दें। और ये मैंने बदलती अपनी आंखों से देखी है। एक साहब मेरे मुर्शिद साहब के पास मेरे ही जरिए से गए थे, तो मुर्शिद साहब उन्हें इल्म हिसाब किताब ये सितारों का देते थे। वो जब सीख गए वो इल्म, तो वो ये अंदाजा नहीं कर सके कि मेरे मुर्शिद मुझसे किस कदर प्यार करते हैं दिल में, क्योंकि बज़ाहिर तो मुर्शिद साहब बहुत डांट डपट करते रहते थे। तो उन्होंने मेरे मुर्शिद साहब की मौजूदगी में मुझसे कहा कि शाह साहब जितना कमाना है अभी कमा लीजिए, अगले 2 साल के बाद ये सब खत्म हो जाएगा। तो मैं तो अपनी हस्ब आदत मुस्कुरा के खामोश हो गया, लेकिन मुर्शिद साहब शदीद गुस्से में आके उन्हें कहने लगे कि ये कैसे कह सकते हो तुम। मैं कहा हजूर आप ही का सिखाया हुआ इल्म है, ये देखिए ये हिसाब किताब है और ये जवाब आता है इसकी रूह से ये है। तो फरमाने लगे कि हाँ हिसाब तो तुम्हारा दुरुस्त है, लेकिन एक बात भूल रहे हो कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो सितारों की चाल को उंगली से बदल देते हैं। उसके बाद हाथ ऊपर को उठाया, उंगली से इशारा किया और कहने लगे बदल दे भी रास्ता अपना। उसके बाद कहा कि अब हिसाब करो क्या है। तो उस बंदे के पसीने छूट गए, तो कहने लगे कि ये तो सारा बदल गया हिसाब। तो कह लेंगे आइंदा इसको कभी ना कहना कि सितारे ये कहते हैं। तो अल्लाह के ऐसे बंदे हैं, तो बजाय इसके कि हम ऐसा बंदा बने जिसको सितारे कंट्रोल कर रहे हों हमारी दानिश में, जबकि ऐसा है नहीं, हम अल्लाह के वो बंदे क्यों ना बने जो उंगली से सितारों की चाल बदल दें अपनी मर्जी के मुताबिक। अब वो एक ही सूरत में होगा और वो है मेहनत, और उसके साथ दूसरी चीजें। ये एक सवाल और है किसी साहब का कि आंसू कुर्बे रब का सबसे कवी जरिया है, हजूर आविश के ऐसा होता तो मैं तो आंखों के इर्द गिर्द ग्लेसरीन लगा के आंसू बहाता रहता कि शायद इसी तरह कुर्बे इलाही हासिल हो जाए। आंसू वो वैल्यूएबल हैं रब के नजदीक जो उसकी मोहब्बत में आंखों से गिरने लगे, वो आंसू वैल्यूएबल हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आंखों से अज खुद बहने लगे। और इसके बरक्स ये याद रखिए कि अगर मुसलमान की आंख से आंसू अपने दुख पर टपकता है तो लायक तहसीन नहीं है, वो कमजोरी की अलामत है। मुसलमान मसाइब से नहीं घबराता, वो अपने रब पर भरोसा करता है। इन जाहिरी निशानियों पर हम न जाएं, रब इन चीजों को नहीं देखता है। रब ताला तो दिल को देखता है कि हमारे दिल में क्या है, जज्बा क्या है हमारा। उस जज्बा को अगर मैं सादिक बना गया तो रब मेरा है। वो जज्बा पैदा होना चाहिए हमारे दिल में। ये किसी साहब ने सवाल पूछा कि हम सर्वबहसियत मुसलमान कैसे रह सकते हैं जबकि हम जब इबादत की तरफ आते हैं तो मसालिक में बढ़ जाते हैं, सुन्नी शिया और देवबंदी वगैरह वगैरह, और फिर खुद को ही सही समझते हैं, बाकी को गलत और दूसरों को अपनी तरफ लाने की तरगीब करते हैं। भाई ये सब पढ़े लिखे लोगों की बातें हैं जो आपने लिख डाली। मुझ जैसा अनपढ़ आदमी जिसकी ना बुनियादी तालीम है ना मुताला है ना कोई अक्ल दानिश है पास, मैं तो ये समझता हूं कि मेरा महफूज तनीन रास्ता एक ही है कि मैं खामोशी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करता चला जाऊं। तो अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हैं तो वहां ना कोई मसलक है ना कोई फिकही मसाइल है ना कोई इख्तलाफ है ना कहीं मुताबिकत है। वहां तो सिर्फ एक ही चीज है कि आंखें बंद करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमली तौर पर बताए गए रास्ते पर अमल पर आंखें बंद करके चलता चला जाए इंसान। तो ये मेरा यकीन है कि वो रास्ता जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, अमली तौर पर करके दिखाया है, अगर उस पर हम आंखें बंद करके चलते चले जाएं बगैर कुछ सोचे तो वो यकीनन हमें उस मंजिल की तरफ ले जाएगा जहां सब खैर ही खैर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक पर अमल करते हुए कहीं कोई मसलक आड़े नहीं आएगा। तो हम इन चीजों को भूल जाएं, अकायद और मसलक सबके काबिल एहतराम है, हम सबको एहतराम दे करते रहें, लेकिन अमल सिर्फ उस रास्ते पर करते चले जाएं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाया हमें, तो फिर कोई खतरा नहीं कि हम फिरकों में पड़ जाएंगे। किस साहब ने लिखा है कि मुख्तलिफ लोगों से सुना है कि इस्लाम में इंश्योरेंस हराम है, इस्लामी नुक्ता नजर के मुताबिक इंश्योरेंस के बारे में इंश्योरेंस पे कुछ नज़र डालिए। अगर कोई कंपनी अपने मुलाजिम को मेडिकल की सहूलत दे और उसे किसी कंपनी से इंश्योर्ड करवाए तो क्या मुलाजिम के लिए ये सहूलत लेना जायज़ है? इसी तरह बैंकिंग सेक्टर में मुलाजमत की जा सकती है। मैं इससे पहले बारह एक बात कह चुका कि मैं मुफ्ती नहीं हूं और न मैं फतवा देने का अहल। दूसरी इसके अंदर एक चीज याद रखिए कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है और सरकारी तौर पर इसका डिक्लेयर्ड मजहब इस्लाम है, हुकूमत भी इस्लामी है। इस हुकूमत ने, मैं मौजूदा हुकूमत की बात नहीं कर रहा, मैं हुकूमत पाकिस्तान की बात कर रहा हूं 1947 से ऑनवर्ल्ड, इस्लामी हुकूमत ने एक नजरियाती काउंसिल, इस्लामी नजरियाती काउंसिल कायम की हुई है जो ऐसे तमाम नुकात पर गौर व फिक्र करके उस पर फतवे देती है और उसमें बहुत जय्यद और मुस्तनद किस्म के उलेमा हैं। तो वो तमाम चीजें जिन पर फतवे आ चुके उनको हम बार बार न छेड़ें क्योंकि उनका फैसला हो चुका, उससे इख्तलाफ फैलता है पब्लिक में। बहुत सादा सिंपल जवाब आपको मिल जाएगा। आप वो तमाम इस किस्म के मसाइल, उनको इस्लामी नजरियाती काउंसिल के फतवों के और फैसलों के नतीजे की रोशनी में देख लीजिए। उसकी तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत पर आ जाएगी अगर वो गलत हुआ कर, खुदा न खास्ता किसी वजह से। मैं ये नहीं कह रहा गलत है, मैं ये कह रहा हूं कि अगर हो जाए गलती तो उसकी जिम्मेदारी फिर हुकूमत पर आएगी क्योंकि उसने अपने जिम्मे लिया हुआ है। तो आप इंश्योरेंस के जिम्मे में और बैंक की मुलाजमत के जिम्मे में इस्लामी नजरियात काउंसिल के फैसलों को देख लें, आंखें बंद करके उस पर अमल कर लें क्योंकि तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत पाकिस्तान की है जिसने वो नजरियाती काउंसिल इसी मकसद के लिए कायम की है। सामने सवाल पूछा है कि अल्लाह ताला औलिया इकराम को यह मकाम अता फरमाता है कि वो एक वक्त में एक से ज़ायद जगहों पर मौजूद हो सकते हैं, क्या यह मकाम उस शख्स को भी हासिल हो सकता है जो महज आमिल हो? और यह भी पूछना चाहता हूँ कि क्या एक गैर मुस्लिम शख्स अपनी रियाजत और मेहनत के सबब यह मकाम हासिल कर सकता है? वलायत का एक मकाम है अब्दाल। जब इंसान, जब कोई वली अल्लाह उस मकाम पर पहुंचता है तो वो बैक वक्त कई जगहों पर देखा जाता है। जब वो उससे आगे चला जाए तो फिर वो दूसरे मामलात में चला जाता है, इनसे ऊपर हो जाता है। आमिल एक डिफरेंट लाइन है, उसमें ये मकाम नहीं आते, ये वलायत में आते हैं। जहां तक गैर मुस्लिम शख्स की बात है, कुरान में क्लियरली लिखा है, हाँ अहले किताब में कुछ साहिब इल्म लोग होती हैं, वो लोग जो अहले किताब हैं उनके यहां भी साहिबान इल्म हैं, ये रब का अपना फरमाया हुआ है। ये अर्ज कर देने के बाद मैं आपसे एक गुजारिश अपनी तरफ से कर दूं, ये तो आपके सवाल का जवाब था। देखिए, हमारी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता कि एक शख्स 10 जगहों पर देखा गया, मेरी सेहत पर क्या असर पड़ेगा उसका। उसने मेहनत की है, उस मकाम पर जा पहुंचा है, ठीक है, अल्लाह ताला उसे मजीद तरक्की अता फरमाए, लेकिन बहसियत मुसलमान मेरी सेहत पर असर क्या पड़ रहा है उसका? कुछ भी नहीं। अगर कोई अहले किताब करामात, जिसको नॉन मुस्लिम के लिए इस्तदराज कहा जाएगा, अगर वो किसी इस्तदराज का इजहार कर देता है या उससे हो जाता है इजहार, तो उससे मेरी सेहत पर क्या असर पड़ता है? मुझे तो अपने अमाल के लिए जवाबदेह खुद होना है। दुनिया का बड़े से बड़ा वली अल्लाह मुझे जवाबदेही से बचा नहीं पाएगा अगर मेरे अमाल दुरुस्त नहीं है। तो मैं किसी के करामात देख देख के खुश होता रहा हूं और अमाल मेरे वैसे ही हूं जैसे अब हैं, तो मैं जवाबदेही से तो नहीं बच सकूंगा। और किसी भी साहिब इल्म से अगर मैं मिलूं तो उसकी करामात मुझे फायदा नहीं दे सकती हैं, उसका इल्म अलबत्ता मुझे फायदा दे सकता है। तो मैं किसी के करामात देखकर उसकी तरफ रजू न करूं, बल्कि मैं उसके इल्म को देखकर उसकी तरफ रजू करूं ताकि उसके इल्म से मुझे फायदा मिले और मैं सीधी राह पर चलने लगूं। हम ये गलत समझते हैं कि जो शख्स मुस्तजाबुद्दावात है वो बहुत बड़ा वली अल्लाह है। दुनिया में एक आदमी मुझे बता दीजिए, इस वक्त 6 अरब की आबादी है, एक आदमी निकालिए बमाए काफिर के बमाए मुशरिक के जिसकी दुआ रब ने कबूल न की हो, जिसे रब ने कुछ अता न किया हो। हालांकि शिर्क को कंडेम किया रब ने पूरी कुव्वत के साथ, बड़ी शिद्दत से कंडेम किया है, लेकिन मुशरिकों को भी सुनता है, मुशरिकों को भी अता करता है, उसकी दुआएं भी, उनकी दुआएं कबूल होती हैं। हवा में साधु भी उड़ लेता है। उससे क्या फर्क पड़ता है? हां, फर्क पड़ता है जहां इंसान साहिब इल्म हो जाए, उसकी जात से मुझे फायदा हो जाएगा कि अगर मैं उसकी सोबत में बैठा तो मुझे इल्म सीखने का मौका मिलेगा। यह और बात है कि दुनियावी ख्वाहिशात मेरी इतनी ज्यादा हो चुकी हैं कि शायद मैं ये कहूं कि इल्म लेकर मैंने क्या करना है, मेरे किस काम का है। मुझे तो वो आदमी बताइए जो दुआ करे तो सारी दुनिया की दौलत मेरे घर में आ जाए और मेरी गुर्बत दूसरों में हो जाए, चली जाए। इन किस्सों में हम न पढ़ें कि कौन क्या है कहां पर है, हम ये देखें कि उससे कुछ इल्म हमें हासिल हो सकता है। मैंने एक किस्सा बयान किया था कि एक साहब इल्म के पास जाया करते थे जब उन्हें 30-35 साल हो गए जाते हुए, तो उनके मुर्शद ने उन्हें हुक्म दिया कि तुम शहर से बाहर जो जंगल है उसमें चले जाओ और ये वजीफा 40 दिन तक पढ़ो, और जंगल के एन दरमियान में बैठना ताकि वहां से गुजरने वाले लोगों की वजह से तुम्हारी तवज्जो, तुम्हारी डिस्ट्रैक्शन ना हो। तो वो मुर्शद के हुक्म के मुताबिक चला गया, और मुर्शद जब ये चल रहे थे इजाजत लेने आए कि मैं जा रहा हूं, तो मुर्शद साहब ने कहा कि जब वजीफा मुकम्मल कर लोगे और तुम इस डेरे की तरफ आने लगोगे, जो ही जंगल के एंड पर किनारे पर पहुंचोगे तो तुम्हें एक शख्स दिखाई देगा, वो तुम्हें रोक के पूछेगा कि तुम्हें क्या चाहिए। वो फरिश्ता होगा बशक्ल इंसान, तो तुम उससे कहना कि मुझे इल्म चाहिए। वो जितने भी इसरार करे, कुछ भी तुम्हें लालच दे, तुम अपनी बात पर डटे रहना कि मुझे इल्म चाहिए। तो वो शागिर्द चले गए जाके जंगल में, उन्होंने चिल्लाका किया, जितना सामान ले जा सकते थे खाने पीने का ले गए, जो जाहिर है कि चंद दिन के बाद खत्म हो गया था। अब ये फाकों पर थे, पानी मिला नहीं था पीने को, जुबान चमड़ा बनी हुई थी और हलक में कांटे थे, होंठ फटे हुए प्यास की शिद्दत से। तो जब जंगल के कोने पर पहुंचे तो वो आदमी मिल गया इन्हें, तो उसने उसी तरह पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। तो इन्होंने कहा कि मुझे इल्म दे दो। तो उन्होंने कहा, पागल हुए, जर अपना हुलिया देखो, कई रोज से तुमने खाया पिया कुछ नहीं है, तुम्हारी शक्ल क्या हो गई, तो इल्म लेके क्या करोगे, उससे क्या हासिल होगा तुम्हें। इन्हें मुर्शद की बात याद थी, ये अपनी बात पर कायम रहे, तो वो इसरार करता रहा ये बात पर कायम रहे कि मुझे इल्म ही चाहिए। फाइनली उसने कहा कि ठीक है, तुम मरना चाहते हो तो मरते रहो, ये लो इल्म, क्योंकि मुझे हुक्म है कि तुम जो मांगो दे दूं, तो ये इल्म ले लो तुम। अब वो ये कह के चला गया वहां से। ये हिसाब चल रहे थे, तो उस जमाने के दस्तूर के मुताबिक शाम हो गई, जो गांव आया उसके पहले दरवाजे पर इन्होंने नॉक किया, तो कहा कि मैं मुसाफिर हूं, मुझे रात गुजारना है। तो उन साहब ने कहा कि हाँ, हमने गांव में एक मेहमान खाना खोल रखा है मुसाफिरों के लिए, आ जाइए आप। तो वो मेहमान खाने में ले गया, खाना वाना खिलाया, पानी दिया। ये रात को इबादत कर रहा था यह शख्स, तो इसे रोने धोने की आवाजें आने लगी और साथ लोग फिरते हुए उनकी चाप सुनाई दी। तो ये उठा, देखा कि इन लोगों ने मेरे साथ नेकी की, मैं देखूं ये क्या है, यहाँ क्या हुआ। तो देखा लोग फिर रहे थे, तो पूछा क्या हुआ। उन्होंने कहा, हमारे सरदार का अकलौता बेटा बीमार था बहुत अरसे से, वो जान कुनी के आलम में है इस वक्त, आखिरी सांस ले रहा है, रब ने इसे इल्म अता कर दिया था। तो इसे कहा कि अच्छा, ऐसे करो कि तुम लोगों के घर के बाहर पौधे बहुत हो गए, उनमें एक बूटी है इस तरह की, उसके पत्ते उंगलियों में लेके मस लो, उससे जो रस निकले वो बच्चे के हलक में टपका दो, बच्चा बच जाएगा। उन्होंने सरदार से कहा, तो सरदार ने सोचा कि बच्चा तो हाथ से जा ही रहा है, तो एज ए लास्ट रिजॉर्ट ये भी कर देखते हैं। उन्होंने वो पत्ते तोड़े उस बूटी के और उसके हलक में रस डाल दिया उसका। बच्चा हैरानगुन तरीके पे संभल गया और उसके बाद रिकवर हुआ। तो अगले दिन सरदार ने कहा कि आप आए तो थे यहाँ मुसाफिर की हैसियत से, लेकिन आपने मेरे साथ नेकी की है, अब आप मेरे जाती मेहमान की हैसियत से यहीं रहिए एक हफ्ता और फिर मैं आपको जाने दूंगा। ये रहने लगे वहां। इसी दौरान उनके मुखालिफ कबीले ने उन पर हमला कर दिया, पूरा कबीला लड़ने के लिए चला गया। ये उस मेहमान खाने की छत पर चढ़कर नजारा करने लगा जंग का। तो इसके इल्म ने इसे ये बताया कि जिनका ये मेहमान है वो पसपा हो जाएंगे थोड़ी देर में। तो इसने फौरन मैसेज भेजा सरदार को कि तुम फला मनूवर करो, उस मनूवर के नतीजे में दुश्मन मार खा जाएगा। सरदार ने वो मनूवर कर लिया और दुश्मन को शिकस्त हो गई। सरदार वापस आया, फतेह का जश्न मनाया जा रहा था। तो सरदार ने कहा कि भाइयों, ये बेटी की जिंदगी और ये फतेह मेरी अक्ल और समझदारी का नतीजा नहीं है, बल्कि ये इस मेहमान के तुफैल ये सब कुछ हुआ है। और मैं दयानदारी से ये समझता हूं कि सरदार बनना इस मेहमान का हक है, मेरा नहीं, कि जो इतना साहिब अक्ल है। नतीजा हुआ कि इसको उसने अपना ताज उतार कर सर से इसके सर पर रख दिया। तो उस वक्त इसे अंदाजा हुआ कि अगर मैं उससे कोई दुनियावी दौलत मांगता तो ये सब न मिलता, मैंने उससे इल्म मांगा तो इल्म भी मिल गया और दुनियावी दौलत और इज्जत भी मिल गई। तो हम जब ऐसे बुजुर्गों से मिले हैं तो हम ये न देखें कि उनकी करामात क्या हैं, उनसे दुआ एकात करवा ली और घर चले गए। हम उनसे इल्म ले लें जो सदा आपके काम आता रहे। ये करामात और ये इस्तदराज और इस किस्म की चीजें बेमायनी हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं। इंसान सिर्फ रब का शुक्रिया अदा तो करता है, उसका शुक्र अदा कर रहा होता है कि तूने बड़ी मेहरबानी फरमाई कि तूने मुझे ये कशफ व करामात अता फरमा दी, तेरी बड़ी मेहरबानी कि तूने अपना इल्म मुझे अता फरमाया। लेकिन अहमियत नहीं देता इनको, क्योंकि इनकी अहमियत है नहीं। इनकी अहमियत बस उतनी है जितनी किसी मदारी के, किसी शोबदबाज के शोबदों की। ये मर्दाने हक जो हैं वो इन कशफ करामात को मदारी के शोबदों से ज्यादा अहमियत नहीं देते। शुक्रिया अदा करते हैं रब की अनायात का कि उसने ये अता कर दी, लेकिन उसे अहमियत नहीं देते। अगर वो अहमियत दें तो वो गुमराह होते चले जाएं कि जिस आदमी से वो हाथ मिलाए उनका कष्ट जारी हो और उस इंसान की असलियत अंदर की उस पर जाहिर हो, तो वो तो हर एक को बुरा समझने लगे। तो मर्दाने हक तो पनाह मांगते हैं अल्लाह की इस बात से। और अगर शैतान वो बात डाल भी दे कि जिससे तुम हाथ मिला रहे हो ये तो बैठा हुआ बाहर तुम्हें बड़ी मोटी मोटी गालियां दे रहा था, तो लाहौल पड़ते हैं दिल में कि मेरा क्या काम है इसको ये जानना कि ये मुझे गाली दे रहा था, अच्छा कह रहा था, मेरा तो इससे वास्ता नहीं। मेरे लिए तो ये मेरे रब का एक बंदा है जो मेरे पास आया है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये मेरे बारे में क्या राय रखता है, मेरे खिलाफ क्या साजिशें करता है, ये मेरा हेडिक नहीं है, मुझे इन बातों से दूर रहना है। तो मर्दाने हक तो जिन चीजों को हम अहमियत देते हैं उनको वो शोबदाबाजी कहते हैं कि ये तो मदारी की शोबदाबाजी जैसी चीजें हैं। मैं माफी चाहता हूं, आज आपके 7 मिनट फालतू ले गया मैं। इंशाअल्लाह ताला बशर्ते जिंदगी नेक्स्ट संडे आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।